जनरञ्जनयशो जनायशोदानन्दन व्रज जनरञ्जनयशो जनायशोदानन्दन व्रज जनरञ्जनयशोदानन्दन व्रज जनरञ्जनयशो जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय श्री नाम संकीर्तन की जय जय श्री प्रभुपाद की जय जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भव दिनेष्ठकी श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध नौवा अध्याय श्लोक संख्या है 16 और 17। यदासित अपि न्यूनम् तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वयंगुलं न्यूनम् यदा दत्त बंधनम् एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवन् एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवन् यदासित्तपि न्यूनम् तेनान्यदपि संदधे स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत् यदा सिद्धपि न्यूनम् तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वयंगुलं न्यूनम् यद्यदा दत्तबन्धनम् एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिता भवत् वैष्णवी यदाचित अपि न्यूनम् तेनान्यदपि संदधे एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत्। इन दोनों श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य इति भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की 16 नंबर के श्लोक का अनुवाद। यह नई रस्सी भी दो अंगुल छोटी बढ़ गई और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई तब भी वह दो अंगुल छोटी बढ़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गई, वे छोटी की छोटी पड़ती गई। 70 नंबर अनुवाद। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियां जोड़ डाला किंतु जब भी वे कृष्ण को बांध न पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखिया थी मुस्कुरा रही थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी, वे सभी आश्चर्यचकित थी। वास्तव में यह विचित्र घटना थी क्योंकि कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मात्र थे, उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से अधिक लंबी रस्सी की आवश्यकता नहीं थी। घर भर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट लंबी रही होगी फिर भी सारी रस्सियां मिलकर छोटी पड़ गई और कृष्ण बांधे नहीं जा सके। स्वाभाविक था कि माता यशोदा तथा उनकी सखी गोपियां सोचती यह कैसे हो सकता है। यह तमाशा देखकर वे सभी मुस्कुरा रही थी। पहली रस्सी 2 उंगल कम थी और जब इसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई तो भी वह 2 उंगल ही छोटी पड़ गई। यदि सभी रस्सियों की छोटाई की गणना की जाए तो यह कई 100 अंगुल हो जाती है। यह निश्चय आश्चर्यजनक बात थी। अपनी माता तथा उनकी सखियों के सम्मुख यह कृष्ण की असीमित शक्ति का अन्य प्रदर्शन था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो नवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। इसलिए संडे सत्र में आए हुए सभी वैष्णव एवं वैष्णवी का श्री राधा गिरधारी मंदिर की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए यहाँ पर वात्सल्य रस से परिपूर्ण ऐसे माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का प्रसंग चल रहा है। श्रीमद् भागवत का श्रवण सभी ग्रंथों में सर्वोपरि कहा गया है। कर्मी लोग, ज्ञानी लोग इत्यादि सभी लोग बहस करते रहते हैं कि कोई देवी भागवत का पाठ करते हैं या तो देवी भागवत का सप्ताह करते हैं, कोई शिव पुराण का सप्ताह करते हैं, कोई गरुड़ पुराण का, कोई श्रीमद् भागवत का। तो कभी कभी जीव ये तय नहीं कर पाता है कि कौन सा श्रेष्ठ है, विशुद्ध सत्व में ग्रंथ कौन सा है, क्योंकि व्यास जी ने तो जीवों की गति के अनुसार सत्व रज तम के अनुसार पुराण की भी इसी तरह रचना की है कि कुछ पुराणों को तमोगुण, शिव पुराण इत्यादि को कहा गया है, किसी को रजोगुण में बनाया है, किसी को सत्वगुण में। लेकिन ये कर्मी लोगों के साथ ये बहुत बहस का विषय हो जाता है कभी कभी कि कौन सा ग्रंथ सबसे बड़ा है। तो एक बार ऐसे चर्चा हो रही थी तो एक व्यक्ति ने कहा कि शिव पुराण सबसे बड़ा है, आप बताइए उसका पिता कौन है, मतलब इसका कोई आदि भी नहीं है, उसका अनादि भी नहीं है कोई, शिव पुराण सबसे। तो उन्होंने कहा, किसी दूसरे ने कहा कि देवी भागवत बड़ा है, देवी ही तो सब कुछ करती है भाई, माँ है ना। तो बहुत बहस चली। इसके बाद में ये व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, अभी निर्णय कर पाना संभव नहीं है कि आप लोग कहते हैं कि देवी पुराण बड़ा, आप लोग कहते हैं कि शिव पुराण बड़ा, कोई कहता है कि भागवत बड़ा। तो अच्छा, तो आप लोगों ने कभी सुना है कि मृत्यु के बाद कोई किसी जीव के गति के लिए देवी पुराण या शिव पुराण कहा गया हो, ऐसा सुना है? तो उन दोनों ने कहा, एक देवी पुराण वाले ने और एक शिव पुराण वाले, नहीं ऐसा तो आज तक नहीं सुना। तो आप लोग मृत्यु के पश्चात गति के लिए शिव पुराण क्यों नहीं बिठाते हो या तो देवी पुराण क्यों नहीं बिठाते हो, अगर सबसे श्रेष्ठ है तो वो तो सब लोग भागवत बिठाते हैं। तो उन्होंने कहा, भागवत ही एक ऐसा सामर्थ्य ग्रंथ है जो व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देने में समर्थ है। मुक्ति के पश्चात भी अगर कोई ग्रंथ समर्थ है मुक्ति देने के लिए, तो वह है श्रीमद् भागवत। इसी से श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्रेष्ठ है, वो प्रतिपाद्य होता है। तो जीते जी कोई व्यक्ति सुन ले, जीते जी कोई व्यक्ति उसका श्रवण कीर्तन करे, तो जीते जी वो मुक्त नहीं हो पाएगा, इसकी क्या शंका है ना। किसी भी पुराण ऐसा नहीं है मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति कहेगा कि सुना और मुक्त हो गया, व्यक्ति जीव मुक्त हो गया, है ना। भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है कि मृत्यु के पश्चात अगर भी वो जीव के उद्देश्य से, जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है उनके उद्देश्य से पाठ किया जाए या तो भागवत जपता किया जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, संसार बंधन सौर्यसी के कर्म से बाहर निकल जाता है। यही श्रीमद् भागवत की विशेषता है। और भक्तों के लिए तो प्रेम से इसका एक एक शब्द, एक एक श्लोक प्रेम से भरा हुआ है। वो वात्सल्य रस हो, सख्य रस हो, माधुर्य रस हो, दास्य रस हो, कोई भी रस हो, उस रस से एक एक शब्द भरा हुआ है। भगवान के प्रति व्यक्ति को, जीव को प्रेम कैसे करना चाहिए वो श्रीमद् भागवत सिखाता है। और इसीलिए इतनी दिव्य लीला को सुखदेव गोस्वामी कह रहे और गा रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है गौड़ी वैष्णव के द्वारा कि इतने विरक्त होते हुए भी श्री सुखदेव गोस्वामी क्यों एक स्त्री का स्मरण कर रहे हैं, है ना? विरक्त है वो तो शिखा की गांठ भी नहीं बांधते, लंगोटी भी नहीं पहनते, है ना? वो परे है सत्व रज तमो से, तो वो क्यों कह रहे हैं कि माता यशोदा दधि मंथन कर रही है ना, उसके बालों में फूल की वेली डाली हुई है ना, कंगन पहने हुए हैं, कान से कुंडल हिल रहे हैं, ऐसा क्यों वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि वात्सल्य रस के जो भक्तगण है, जो वात्सल्य रस में भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उन भक्तों के लिए अवश्य कर्तव्य के रूप में जो यशोदा देवी भगवान कृष्ण की सेवा कर रही है अपने पुत्र समझकर, अपने पुत्र मानकर, वैसे ही उनके पद चिन्ह पर चलते चलते कोई व्यक्ति ऐसे ही भगवान का लालन पालन करेगा, ऐसा ही भाव रखेगा, तो निश्चित रूप से उन भक्त के भाव को वह प्राप्त करेगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इतनी गहराई से वर्णन कर रहे हैं। वैसे ही सख्य रस के भक्तों के लिए, वैसे ही माधुर्य रस के भक्तों के लिए, वैसे ही दास्य रस के भक्तों के लिए, जो जो जीव जिन जिन भावों में, जिन जिन रसों में जाना चाहते, उन सब के लिए गोपीर भरतुर पद कमल और दास दासानुदास, यही है दास दासानुदास की भावना, कि उन्होंने जिस तरह से भगवान की सेवा की है, भगवान की कीर्ति गाई है, भगवान का स्मरण किया है, उनको लक्ष्य में लेते हुए हम लोग भी वैसा करेंगे तब हम भी उस रस को प्राप्त कर सकते हैं। वरना चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध सिते करय उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, ये तो नित्य सिद्ध है, वो कभी कोई साधन के द्वारा वो साध्य नहीं होता है। तो भाई होता ही नहीं है, प्रश्न होता है तो इतनी मेहनत करते, मंगल आरती में आते हैं, रोज माला करते, माला के लिए तो 7-8 दिन से तो क्लास में जा रहे हैं, हरिनामामृत सेमिनार में जा रहे, तो भाई कैसे प्राप्त होगा? प्राप्त होगा ही नहीं, नहीं होगा, कैसे होगा? ऐसे शुद्ध भक्तों के जीवन चरित्र सुनते सुनते, कीर्तन करते करते, स्मरण करते करते, जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब प्रेम उदय होगा। तो भक्तों के लिए भागवत क्या है? रस से, प्रेम से भरा हुआ लबालब ग्रंथ है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने भक्तों के लिए सिर्फ भगवान, जैसे भक्तों के लिए सिर्फ मुक्तिदाता नहीं है, संसार के लिए क्या है भगवान? मुकुंद, मुक्तिदाता, है ना? लेकिन भक्तों के लिए मुकुंद नहीं है, भक्तों के लिए क्या है? मुक्ति के सुख को भी कुचित कर देने वाले मुकुंद है। भक्तों के लिए भी वो मुकुंद है, बाहर वालों के लिए भी वो मुकुंद है, लेकिन दोनों मुकुंद में अंतर है। बाहर वाले के लिए क्या है? मुक्ति, बस मुक्ति दे दे, इस संसार के दुखों से मुक्त कर दे, यही। और भक्तों के लिए जो मुक्त होना चाहते हैं उस सुख को भी कुत्सित कर दे, तोड़ दे, इसलिए भक्तों के लिए मतलब साक्षात प्रेम में बंध जाए, अपना प्रेम प्रदान करे, प्रेम रूपी रस प्रदान करे भक्तों के लिए, यह मुकुंद है ना। तो वैसे ही भक्तों के लिए ये भागवत है, वो रस शास्त्र है। पिबत भागवतम रसम, इसलिए पिबत कहा गया है, वरना तो सुनत कहा जाएगा ना, तो पिबत क्यों कहा गया, पियो। तो भक्त प्रायः पीते रहते हैं, भगवान के दर्शन को पीते रहते हैं। ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए हैं तो श्रीमद भागवत में ऐसा वर्णन है, तो जैसे ध्रुव महाराज भगवान को अपनी आंखों से पी रहे हैं। तो कहीं सुना है कि आंखों से पिया जाता है, आंखों से सिर्फ देखा जाता है, लेकिन ऐसा लिखा गया है तो कुछ सुखदेव गोस्वामी बोले हैं तो उसका कुछ मर्म होगा ना। वो हमारी तरह एक शब्द भी फालतू नहीं बोलते, हम पूरे दिन में एक शब्द भी काम का नहीं बोलते, वो एक शब्द फालतू नहीं बोलते, इतना ही अंतर है। पी रहे ध्रुव महाराज भगवान को पी रहे, बहुत सुंदर श्लोक शब्द दिया गया है कि आंखों से भगवान को पी रहे। भक्तों के लिए ग्रंथ का रस है वो पीने की, पीने के लिए। प्रथम स्कंद के नौवें अध्याय में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया है रस्सी से। आप लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बांध दिया है तो बांध दिया होगा, लेकिन इसका बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म रहस्य है। एक एक शब्द पर आचार्यों ने इतनी इतनी टीका लिखी है और इतना इतना रस प्रकट किया है कि निश्चित रूप से कोई व्यक्ति अगर इस अध्याय को सुने आचार्यों की टीका के माध्यम से, वो वात्सल्य रस में जो होगा तो निश्चित रूप से प्रेम की उलाहना उसके हृदय उत्साह उमड़ जाएगा। सुखदेव गोस्वामी से अध्याय की शुरुआत में कहते, एकदा गृहदासीसु यशोदा आनंद गेहिनी। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित को जब कहते कि स्वयं महारानी होते हुए भी स्वयं दधि मंथन करने के लिए बैठ गई नंद गेहिनी। महारानी स्वयं बैठ गई तो प्रश्न होता है, भाई स्वयं बैठ गई का क्या भाव है? स्वयं मतलब हजारों हजारों दासियां थी उसके पास, फिर भी माँ ने विचार किया कि सब गोपीगण ऐसे ही लाला की उलाहना लेके, लाला की फरियाद लेकर के आती थी कि तुम्हारे कृष्ण ने हमारे घर में मक्खन चोर दिया, मटका फोड़ दिया, बंदरों को खिला दिया। तो माँ ने भी एक बार विचार करके कि ये सब गोपी कह रही है तो कुछ गलत तो नहीं कहती होगी ना, उसकी बात में कुछ सही तो होगा, तो मेरा लाला ही क्यों जाता है दूसरे के घर में, दूसरे का बच्चा मेरे घर में क्यों नहीं आता है? माँ के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है ना, कि इसमें निश्चित उन माताओं का और मेरे में अंतर है, क्योंकि मैं अपने दासियों के द्वारा माखन निकालती हूँ, इसलिए मेरे लाला को शायद पसंद नहीं होगा। और वो क्या करती है, वो स्वयं अपने अपने बालक को, अपने अपने लाला को माखन खिलाती है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ के हाथ का बहुत मीठा होता है। वैसे एक लोक प्रसिद्ध बात है कि माँ के हाथ का जो है खाना, वो दूसरी जगह कहीं पर अमेरिका कहीं पर चला जाओ, लेकिन जो माँ के हाथ में ममता है, माँ के भोजन में जो प्रेम है, जो भाव है, वो दूसरे के हाथ में नहीं। तो मैं जरा देखती हूँ कि मेरे लाला को मेरे हाथ से खिला कर कि इसके बाद वो क्या करता है। तो माँ स्वयं बैठ गई यदि मंथन करने के लिए, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि यानी यानी है गीता बाल चरितानी। तो मैया दधि मंथन करते करते क्या कर रही थी, तत्काल चरितानी गीतानी। जो भगवान ने जो जो लीलाएं की थी, माताओं का एक सहज स्वभाव होता है कि वो किसी भी बात को गान में बदल सकती है, है ना। वो चलते चलते भी गान कर सकती है, वो बैठे बैठे भी गान कर सकती है, वो रोते रोते भी गान कर सकती है। गान करना उसके स्वाभाविक है। तो जो बाल लीला भगवान की थी, पूतनावध इत्यादि, उसको गा रही थी, स्मरण थी, साथ में क्या कर रही थी, स्मरण कर रही थी, वाणी से गा रही थी, कानों से सुन रही थी, मन से स्मरण कर रही थी। यही रहस्य है। किस कार्य के लिए मैं यहां बैठे हैं? तो कि मक्खन निकालने के लिए। मक्खन क्यों निकालना है? लाला के लिए, कृष्ण के लिए। मक्खन निकालना भी कृष्ण है, मतलब कृष्ण के लिए है। इसका हर एक कार्य कृष्ण के लिए है। कोई कार्य कर रही है तो कृष्ण के लिए, गा रही है तो कृष्ण के लिए, स्मरण कर रही है तो कृष्ण के लिए, सुन रही है तो कृष्ण के लिए, कृष्णमय सब क्रिया हो रही है। ईश्वर एक हरिशूरी जी करके विद्वान पंडित हो गए, बहुत टीका करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना काम धंधा करते करते, जैसे मैं अपना वैसे तो अपना काम ही कर रहे हैं, काम करते करते भगवान का श्रवण करेगा, भगवान का स्मरण करेगा और भगवान का कीर्तन करेगा, तो निसंदेह भगवान उसके हृदय का रस पीने के लिए आ ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब यशोदा मैया इस तरह गान कर रही थी, काम सैन्य काम, भगवान सैन्य काम हो गए, दूध पीने की इच्छा हो गई, क्यों नहीं होगी? भगवान स्व सुख त्याग दिए। कुछ कुछ संतों का मत है कि भगवान स्व सुख, यद्यपि भगवान निद्रा में थे, भगवान सो रहे थे, तो सो रहे थे भगवान, फिर भी स्व सुख त्याग कर इस माता का दूध मतलब प्रेम रूपी रस को पीने के लिए आ गए। तो लाला ने आकर सबसे पहले क्या किया, जो मत रही थी वो मथन को पकड़ लिया और रोक दिया मां को। इसके बाद ऐसे अर्थ करते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सार रूप में मां ने गोद में लिया और मां ने दूध पिलाया। दूध पिलाया तो आप सभी लोग जानते हैं कि सामने वहां पर तो गैस तो नहीं होगा, लेकिन गैस तो अभी आया होगा, सगड़ी बगड़ी भी नहीं होगा, वैसे ही देसी गांव के लोग समझ जाते चूल्हे के ऊपर गर्म करते हैं, तो वहां पर गर्म हो रहा था तो दूध में उफान आ गई। वो भी चिन्मय है, वो गोकुल का दूध है, मीरा रोड का थोड़ी ना है। इसमें पानी ज्यादा है कि दूध ज्यादा है कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि क्या ज्यादा है, पानी ज्यादा है कि दूध ज्यादा है। वो तो चिन्मय है, पद्मगंधा गाय का दूध है। उफान आ गई तो माँ लाला को छोड़कर कृष्ण दूध को बचाने के लिए दौड़ी। कितना विपरीत भाव है। एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो दूध को बचाने के कृष्ण को छोड़ दिया, त्याग दिया, है ना। लेकिन इसमें भी वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य रस है। तो दूध को इसलिए बचाना था कि बाद में अगर लाला को भूख लगे तो इसी दूध से मक्खन बनाकर लाला को खिलाना था। इसलिए थोड़ी देर कभी कभी माँ खंडित बात दे भी देती है बच्चे, तो उसको हर्ष नहीं होता है ना, दुखी होता है, लेकिन अपने बच्चे को ठीक करने के लिए कभी कभी ऐसी दवाएं देनी पड़ती है। तो वैसे ही माँ ने साइड में रख दिया तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि माँ ने लाला को छोड़कर वो दूध को महत्व दे दिया। नहीं नहीं, कहते ही नहीं, कभी नहीं। यशोदा जी के मन में इस लेस मात्र भी ऐसा संदेह नहीं उत्पन्न हो सकता। लेकिन यशोदा मैया के मन में तो ऐसा नहीं आया, लेकिन लाला ने सोच लिया कि मैया मुझे छोड़कर दूध, मुझसे ज्यादा दूध का महत्व दे रहे, उनको कहते हैं कि पत्थर उठाकर मारा, और कोई कोई कहते हैं कि लोहे का एक टुकड़ा छिद्र कर दिया, छिद्र कर दिया तो दही जितना भी था वो जब लाला को पता चला कि इसमें से फूट गया तो वो भी भाग गया। माँ को आकर देख लाला पलायन हो गया तो माँ समझ गई, माँ तो आखिर माँ थी कि ये मेरे बेटे का काम है, और भगवान जब जा रहे थे तो भगवान भगवान होते हुए भी उतनी बुद्धि नहीं आई कि मैं मक्खन से जाऊंगा ये सॉरी दही से जाऊंगा तो मेरे पैर के निशान रूम तक हो जाएंगे, भगवान होते हुए भी ऐसी बुद्धि नहीं रही। दो प्रकार की शक्तियां होती है, एक स्वजन मन मोहिनी और एक स्वभक्त जन मन मोहिनी शक्ति, जो इस ज्ञान को ठका। कभी कभी हम लोग बहुत सुनते हैं कि उसको यह ज्ञान नहीं रहा, यशोदा को यह ज्ञान नहीं था, भगवान को यह ज्ञान नहीं रहा, भगवान को ये उसको ये, लेकिन उसमें दो प्रकार की शक्तियां काम करती है। भगवान में जो शक्ति काम करती है वो स्व मन मोहिनी शक्ति उसको कहा जाता है, और भक्त में जो शक्ति काम करती है उसको स्वजन मन मोहिनी शक्ति कहा जाता है। ज्ञान में रहते मतलब हमारी तरह तमोगुण में नहीं रहते, उसका ज्ञान ढका रहता है मतलब ऐश्वर्य ज्ञान ढका रहता है, माधुर्य के प्रभाव से उससे माधुर्य की श्रेष्ठता साबित होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो भगवान को भूल गई, भगवान को भगवान ही नहीं समझ रही, ऐसा नहीं होता है। ये तो हम लोग है ना रजोगुण और तमोगुण की बुद्धि के स्तर से वही सोचेंगे, हमारी तरह ही भगवान का शरीर है, हमारे मन से भगवान को नापेंगे, हमारी बुद्धि से भगवान को सोचेंगे, नहीं नहीं। इसलिए भगवान को भागवत दोनों भागवत के माध्यम से समझना चाहिए, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। तो अज्ञान में रहने का यह अर्थ नहीं है, अज्ञान का में रहने का अर्थ है कि माधुर्य रस ऐश्वर्य रस को दबा देता है। ज्ञान की चरम और परम सीमा तो श्री यशोदा नंदन के गोद में खेल रही है ना, जिसको ज्ञान की परम और चरम सीमा कहते हैं, नेति नेति कहा जाता है, वो तो यशोदा मैया के गोद में खेल रहे है, तो वो क्या इसको क्या ज्ञान की, यशोदा जी को क्या ज्ञान की आवश्यकता है, तो उसको कुछ भगवत गीता का पाठ करने की जरूरत नहीं है, हा? उसको कुछ ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लेकिन ज्ञान मतलब यहाँ ऐश्वर्य माधुर्य ज्ञान समझना है। और भगवान के बीच बीच माँ यशोदा समझ गए कि ये उसका ही काम है, और भगवान ने कमरे के भीतर जाकर क्या किया, भगवान ने कमरे के भीतर जाकर एक उखल के पर चढ़ गए, और वहां से जो मटकी दूसरी मटकी थी जो माखन था उसमें से बंदरों को बांटने लगे, खुद खाने लगे और बंदरों को बांटने लगे। हरिशूरी जी वहां पर एक क्या करते हैं कि कोई बड़े सज्जन व्यक्ति उखल, खल का अर्थ होता है दुष्ट, वो निकाल दीजिए, खल का अर्थ होता है दुष्ट स्वभाव का, क्रूर स्वभाव का व्यक्ति है ना, कोई बड़ा व्यक्ति अगर कोई खल के संग में आ जाए, कोई दुष्ट संग में आ जाए तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है ना, इसलिए भगवान दान, खल के संग में आकर भी भगवान दान कर रहे हैं, बंदरों को बांट रहे हैं कि लो भाई तुम भी सब बराबर का, हम लोगों का भाग है, तुम भी खाओ हम भी भाई, तो भगवान बंदरों को खिला रहे कि संचल नेत्र से देख रहे थे कि कहीं माँ आ न जाए, भीतर से डर तो था ही कि कहीं माँ आ न जाए। जब माँ हाथ में छड़ी लेकर आई और कृष्ण पलायन वहां से भागने लगे, सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है आगे के श्लोकों में कि भगवान कृष्ण भाग रहे हैं, और उसके बीच माँ यशोदा, माँ यशोदा का शरीर थोड़ा मजबूत होने से माँ कि गति थोड़ी धीमी पड़ गई, लेकिन अंत में उन्हें भगवान को पकड़ ही लिया। कौन भगवान को पकड़ लिया? सुखदेव गोस्वामी के योगी का मन तपस्या न क्षेमम न प्रवेष्टुम, वह भगवान को पकड़ लिया जो बड़े बड़े योगीगण तपस्या के द्वारा अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं, अपने मन को पका लेते हैं। कितने साल के जन्म 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 मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। तो करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों वर्षों तक भी योगी मुनि अपनी मन को तपस्या के द्वारा शुद्ध कर लेते, फिर भी वह मन न प्रवेशतुम न लेते, वह मन भी उस भगवान में प्रवेश नहीं कर पाता। उस भगवान को माँ यशोदा ने पकड़ लिया। मतलब कहने का अर्थ, कोई साधारण बालक को नहीं पकड़ा। योगी गण अपने मन को पवित्र करने के लिए हजारों हजारों साल तपस्या करके पवित्र करते, उन पवित्र मन किए वाले योगी भी जिस मन को भगवान में प्रविष्ट नहीं करा सकते, उन भगवान को माँ यशोदा ने पकड़ लिया। और पकड़कर माँ के हाथ में छड़ी है, माँ धमकाने लगी। चक्रवर्ती पाद कहते कि किसको धमकाने लगी? तो कहते चतुरानन पंचाननन, चतुरानन मतलब चतुर्मुख वाले, चार मुख वाले अर्थात ब्रह्मा जी, पंचानन मतलब पांच मुख वाले भगवान शिव, जिनकी स्तुति गान करते रहते हैं। योगिंद्र मुनिंद्र जिनके प्रभाव को पार नहीं पा सकते, योगी जन जान पाते है न जिसका प्रभाव, श्रुतियां भी नेति नेति कहे हार जाती है। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र जिनके प्रभाव को पार नहीं पा सकते, ब्रह्मा भगवान शिव इत्यादि बड़े बड़े देवताओं इस संसार के इस ब्रह्मांड के जिसका स्तुति गान करते रहते हैं, और यम यमदूत साक्षात महाकाल भी जिसके भय से कांपता रहता है, वह भगवान आज यशोदा मैया से भय में आ गया। जिसके नाम से प्रभाव से, भागवत में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में वहां तक कहा गया है कि जिसके नाम से, नाम के प्रभाव से भय साक्षात महाकाल भी कांपता है। भगवान के प्रभाव, उसके नाम अगर किसी भी व्यक्ति के जीव पर विवश होकर आ जाए, यन नाम विवशो गृणन अपन संस्कृति गौराम, यन नाम विवशो स्वयं विभेति भयम, स्वयं भय भी कांपता है। विवश होकर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले ले, ऐसे प्रेम से नहीं, स्वाभाविक, तो भी भय उस व्यक्ति से जो नाम जीव के जीव पर है उससे कांपता रहता है, काल उससे कांपता रहता है, वह भगवान भय में आ गए। यदि भी शास्त्रों में भगवान और भगवान के नाम समान ही कहा गया है, अभिनत्वा नाम नामनी, है ना, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। लेकिन फिर भी भाववश कभी कभी भक्तगण कहते हैं कि भगवान से बड़ा भी भगवान का नाम है। कैसे? श्रीपाद रूप गोस्वामी पद्यावली में श्रीपाद सिद्धर स्वामी का एक श्लोक कोटेशन करके कहते हैं कि यही भगवान सब जीवों के हृदय में है, है ना, परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में भगवान उपस्थित रहते हैं, सब जीवों के साथ है। लेकिन किसी भी जीव, चाहे जलचर हो, नभसर हो, कोई भी हो, किसी भी जीव संसार वृक्ष का एक पत्ता भी कम नहीं कर पाए। भगवान परमात्मा के रूप में रहते हुए भी व्यक्ति का जो सौर्यासी का परिभ्रमण है, उस परिभ्रमण को भगवान कम नहीं कर पाए, है ना। ऐसा कभी सुना कि भगवान उसके हृदय में है तो अभी 1,00,000 योनि में उसको नहीं जाना पड़ेगा, है ना, उसको जितनी भी योनियां बनाई है उन सब योनि में कर्म के अनुसार जाना ही पड़ेगा, है ना, ये बात सत्य है। भगवान साथ में है फिर भी, लेकिन हे प्रभु आप बताइए कि किसी भी जीव के अग्रभाग पर आपका नाम आ जाए तो उस व्यक्ति इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आप बताइए कि मैं किसको बड़ा मानूं, आपको बड़े मानूं कि आपके नाम को बड़ा मानूं? तो इसका कहने का तर्पट यह है कि आपसे भी बड़ा आपका नाम है। आप हृदय में रहते हुए भी कुछ जीव का उद्धार, लेकिन आपके नाम जीव के अग्र भाग पर आ जाए तो आने मात्र से वो जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए हे प्रभु आपसे बढ़कर आपका नाम है। और कलयुग का यही धर्म है कि, लेकिन उस नाम को किस प्रकार लिया जाए, सिस्टम में गड़बड़ी है ना। नाम तो सब लोग लेते हैं, भाई नाम लो नाम से सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, उसकी कुछ विधि है, भगवान की सेवा करने की कुछ विधि है। यद्यपि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशी दस हूँ, भाव से कुभाव से भगवान की सेवा का फल हो ही जाता है, मिल ही जाता है, लेकिन इसमें बहुत देर लग जाती है। और प्राय कभी कभी देखा भी जाता है कि व्यक्ति से छूट भी जाता है, अपराध करते करते, नामाभास करते करते, है ना, खास करके अपराध करते करते साधन छूट भी जाता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि जे रूप नाम लै ले नाम प्रेम उपजय, ताहार श्लोक सुन स्वरूप राय रामानंद, किनादपि सुनी सेन दरो रिव सहिष्णुना अमानीना मान देन कीर्तनीय सदाहरी। ये तो सार रूप में इस सूत्र को समझाने के लिए भागवत महाराज 6 दिन से सेमिनार कर रहे हैं, इस बात को समझाने के लिए कि नाम कैसे लिया जाए। बस नाम बिना की सुनाही को आरो चौदह भुवन माजे, चौदह भक्ति नो ठाकुर जी कहते कि चौदह भुवन ब्रह्म लोक तक गया मैं, सार क्या हुआ, बस कुछ नहीं, नाम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम, इसके अलावा नथिंग, कुछ नहीं। नाम अंक है, अंक नाम क्या है, अंक होता है ना, 1 2 3, और दूसरे दूसरे जितने भी साधन है वो शून्य है। अगर नाम नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, कोई महामंत्र नहीं जपता और कितना भी अनुष्ठान करे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। और नाम लेता है और दूसरा दूसरा साधन भी करता है तो वो दुगना तिगना चौगुना हो जाता है, 10, 100, 1000, 1,000,000, 10,00,000, 10,00,000 करोड़। सब सेवा की पूर्ति नाम से होती है। यदि भी कर्मकांड में भी आप लोग शादी किए हुए पाए हैं तो उसमें भी भगवान के नाम से ही पूर्ति होती है, भगवान का नाम लास्ट में लिया जाता है तब पूर्ति होती है। नाम बिना किछु नहीं को आरो चौदह भुवन, तो मैं यह कह रहा था कि वो भगवान भी डरने लगे, कौन जिसके नाम से प्रभाव से काल डरता है वह भगवान डरने लगे। तो माँ यशोदा ने स्वाभाविक कह दिया कि क्यों मटकी फोड़ा, अरे दुष्ट, ऐसा लिखा गया गोपाल शंभू में, माँ गाली देने लगी, हे चोर, हे नवनीत चोर, हे दुष्ट, हे अपराधी कालक, ऐसा संबोधन दिया गया है गोपाल शंभू में। बता क्यों अपराध किया, तो बहुत ज्यादा वहां तो बहुत सारे वर्णन है, लेकिन अंत में भगवान कहते हैं कि माता क्यों डरा रही हो, छोड़ दो ना, अब नहीं छोड़ूंगा, अब अपराध नहीं करूंगा। माँ यशोदा बहुत गुस्से में थी, पहली बार गुस्से में आई माता। आज तक लाला ने अनगणित मटका फोड़ दिया है, अनगणित बार मक्खन चोरी की है, लेकिन माता उसको भुला देती थी, हंस देती थी, लेकिन आज माँ का तारा है वो ऊपर है। कृष्ण ने बार बार कहा कि माता छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, माँ आज छोड़ने के मूड में नहीं है। तुझे बताना ही पड़ेगा कि तूने क्यों छोड़ा, बस तो हद हो गई। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया बता दू, तो मैया ने कहा तब से यही तो मगजमारी कर रही हो तुझे पूछने के लिए कि क्यों फोड़ा। अच्छा तो सुन माँ, जब तू मुझे नीचे उतार कर दूध को बचाने के लिए जा रही थी, तब तेरे चरणों में जो कड़े पहने हैं उस कड़े के प्रभाव से वो फूट गया मैया, मैंने नहीं फोड़ा, और वो फूट गया तो स्वाभाविक था कि इसमें से दही निकलेगा, मक्खन निकलेगा, तो मक्खन तो वानर का स्वभाव है, देख लेता है तो देखकर आ जाए, तो वानर लोग आ, तो मैं उसको भगाने के लिए गया तो मैंने देखा कि तू छड़ी लेकर आ रही है, तो मैं भी भयभीत होकर भागने लगा। तो इसमें तू बता कि मेरा क्या दोष है। गुजराती में कहते अन मानो मगज गयो। लेकिन माँ ने मन में विचार किया, बहुत बहुत बात वहां पर गोपाल शंभु में बहुत वर्णन है। लास्ट में कृष्ण ने कह दिया तू मुझे नहीं छोड़ेगी तो मैं वन में भाग जाऊंगा, वो बंदरों के साथ वन में ही रहूंगा। तब माता ने विचार किया सचमुच से भाग जाएगा, ये अभिमानी हो गया है, ये नटखट हो गया है, उसको अब दंड देना ही पड़ेगा, उसके विकर्म की उसको सजा मिलनी ही चाहिए। इस भाव से माता ने मन में विचार किया कि अब उसको बांधना पड़ेगा, अगर वन में चला जाएगा तो मैं अकेले घर में हूँ, सब गोवर्धन गए हैं, गोवर्धन पूजा की तैयारी चल रही है, सब गड़बड़ हो जाएगी और तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। उस दो भावों के साथ में लेकर मैया ने बांधने का निर्णय किया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि किसको बांधने जा रही है, कैसे बंधेगा, न बहिर्यस्य न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न अभिशापरम पूर्वा परम बहिष्यांत जगत हो यो जगत चय, जिसका अंतर नहीं है जिसका बाहर भी नहीं है। अंतर क्यों नहीं है भाई, वो मक्खन बक्खन कहाँ जाता है, अंतर नहीं है तो है ना, बाहर क्यों नहीं है, माता की गोद में है तो कमरा गोकुल भारत ये सब बाहर ही हुआ ना। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी कहते कि जिसका कुछ बाहर नहीं है और अंदर भी नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह है। मतलब इस सारा श्लोकों का भाव कहने का यह है कि काल देश और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, उसे कोई नाप नहीं सकता, उसे कोई बांध नहीं सकता। करोड़ों ब्रह्मांड आकर भी मिल जाए तो भी उसको बांध नहीं सकते, क्योंकि वो तो इसका एक लोम कुप समा जाते हैं। तो करोड़ों ब्रह्मांड मिलकर भी नहीं बांध सकते। तो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है, असीमित है, उसको सुखदेव गोस्वामी कहते कैसे मैया बांधेगी। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी कहते कि तम मत्मा तम मत्वा आत्मजम व्यक्तम मत्स्य लिंगम अधोक्षज गोपिको लुखले धम बबंध प्राकृतम यथा। लेकिन जैसे प्राकृत माता अपने पुत्र को बांध देती है, वैसे माता यशोदा ने अपने आत्मज गर्भजात शिशु को बांध दिया। आत्मज का अर्थ होता है गर्भजात, गर्भजात शिशु को बांध दिया। कैसा था तो अव्यक्तम अधोक्षज, अव्यक्त और अधोक्षज, प्राकृत इंद्रियों से प्राकृत ज्ञान से ऐसे भगवान को उखल के साथ बांध दिया। तो वहां की सभी वस्तुएं चिन्मय है, तो उखल आकर बोला कि मैया तो कृष्ण को तेरा लाला को बांध रही है, उसने चोरी की है, उसमें मेरी क्या गलती, साथ में मुझे क्यों बांध रही है ना। दामोदर प्रभु उखल ने कहा, क्या कहा, कि मुझे तू क्यों बांध रही है, तेरे लाला ने चोरी किया है। तो मैया कहती है लेकिन संग में तो तेरा आकर चोरी की ना, किसके संग में चोरी की, मेरे संग में आकर चोरी की ना। तो उसमें उखल कहता है कि मेरा क्या दोष है, तेरा लाला मेरे पास आया और तू मुझे दोषी मानती है, तू मुझे चोर मानती है, तो थोड़ी देर के लिए आया, अभी तू बांध रही है तो ज्यादा देर तक अगर रहेगा तो बिगड़ जाएगा। तो वैसे भी तेरे को मेरे साथ नहीं बांधना चाहिए अगर मैं चोर हूं दुष्ट हूं तो मैया कहती है कि दुष्टों के संग में रहने से जब उसे पता चलेगा कि दुख मिलता है तो तेरा संग छोड़ देगा। कभी कभी प्राय बच्चा है वो अग्नि के पास जाता है ना, लेकिन एक बार वो अग्नि उसको स्पर्श हो जाए तो उसके पास जाना छोड़ देता है। वैसे ही उसको पता लग गया, एक बार पता हो जाएगा कि तेरे संग में आने से उसको यह सजा मिलती है अथवा मिलेगी, तो दोबारा तेरे संग में नहीं आएगा, इसलिए तेरे साथ ही बांधूंगी। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या घटना घटी, तद नाम बद्धमानस्य सर्वकस्य कृतागस्य द्वयंगुलोनो भूतेन संदधिन्यस्य गोपिका। बार बार गोपिका गोपिका शब्द कह रहे, उसका भी बहुत बहुत भाव कहा गया है लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए सार रूप में कहते हैं कि तद नाम बद्धमानस्य स्व अर्भकस्य कृतागस्य। तब महाराज परीक्षित को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि एक ऐसी माता है जो भगवान कृष्ण को बांध रही है। तब परीक्षित कहते हैं कि कृतागस्य, उन्होंने अपराध किया था, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी का उन्होंने अपराध किया था। तब महाराज परीक्षित ने कहा कि हाँ तो ठीक है ठीक है, अपराध तो हो ही गया था उनसे। तो तद काम बद्ध मानस, जब माता यशोदा इस बालक को बांधने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बांधने वाली रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ रही है। यहाँ पर आचार्यों का मत अलग अलग है। सिर्फ जीव गोस्वामी कहते हैं कि दो अंगुल का मतलब सिर्फ दो अंगुल ही नहीं है, मतलब थोड़ा कम रह जाता था। जैसे हम किसी को कहते हैं कि दो दाना सिंह दे दीजिए ना, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दो ही दाना गिन कर दो, है ना, मतलब थोड़ा सा दे दीजिए। अथवा तो हम किसी को कहते हैं कि वहां कितने आदमी आ रहे, जैसे कोई कथा होती है सेमिनार होता है, हम पूछते हैं तो कितने आदमी वहां पर आए थे, तो कोई कोई कहते हैं कि दुनिया भर से आए थे, तो दुनिया भर के मतलब दिल्ली से कलकत्ता से सब खाली होकर नहीं आ गए थे, मतलब बहुत लोग आ गए थे इसका अर्थ। तो यही जीव गोस्वामी कहते कि दो अंगुल मतलब थोड़ा छोटा, लेकिन सनातन गोस्वामी ने बहुत सुंदर भाव लिखा, दो अंगुल मतलब क्या है। आगे के श्लोक में उसे कह रहे हैं कि यदा सिद्ध अपि न्यूनम चेनन अपि संदे, चेनन अपि संदे तद्दत अपि द्वयन उंगलम न्यूनम यद यद आत्त बंधनम। तो एक रस्सी उसके पास जो थी वो दो उंगल छोटी रह गई, तो माने दूसरी रस्सी मंगाई, यद आसित अपि न्यूनम, वह रस्सी भी न्यूनम, न्यूनम का अर्थ होता है कम कम, एकोनविश एक उन्नविश, उनका अर्थ होता है कम कम, इसलिए एकोनविश 19 को एकोनविश संस्कृत में कहते, तो वह भी कम रह गई। चेनन अपि संदते उसको भी जोड़ा, तद तद अपि द्वयंगलम न्यूनम, जितनी जितनी रस्सी जोड़ दी गए वह सब क्या हुआ, दो उंगल छोटे ही रह गए। भगवान को बांधने के लिए मार रही है, भगवान ने संकल्प किया कि अब मुझे बांध देगी तो मैं माखन कैसे चोरी करूंगा, बच्चों के साथ खाना कैसे खाऊंगा। तो तुरंत भगवान के भीतर संकल्प शक्ति आ गई और ऐश्वर्य भगवान व्यापक सर्वभूत सब शक्ति आ गई और भगवान को बांधने नहीं देती थी। दो उंगल का बहुत बहुत भाव दिया गया कि दो ही उंगल क्यों कम रह गई। तो कुछ कुछ आचार्यों का मत है कि जब मैया अपने हाथ में रस्सी लेती थी तो भगवान की नजर इस तरह पड़ती थी रस्सी पर, तो भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो रस्सी पर भी पड़ती थी रस्सी मुक्त हो जाती है, तो मुक्त वस्तु किसी को कैसे बांध सकते हैं। इसलिए दो उंगल कम पड़ती जा रही है। किसी ने कहा कि ये रस्सी है तो माता यशोदा की है, तो माता यशोदा सद्गुण से बांधना चाहती है ना भगवान को, तो रस्सी को सद्गुण से रस्सी को लेकर जाती थी जब भगवान के पास, तो सारे सद्गुणों का उद्गम भगवान है ना। सारे सद्गुण कहाँ से निकले हैं, तो भगवान से ही तो निकले, तो सारे सद्गुण के जो उद्गम है उन्हीं भगवान में यह सद्गुण समा जाता था, इसलिए दो उंगल कम रह गया। ऐसे बहुत बहुत सारे भाव है लेकिन समय हो गया है। सार में श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि केवल सिर्फ नाम के प्रेम से भगवान बंधता है ऐसी बात नहीं है, बहुत उच्च कोटि की बात कह रहे हैं। केवल प्रेम से भगवान बंध जाए ऐसी बात नहीं है, उनमें भी दो वस्तु होनी चाहिए, एक व्यग्रता और दूसरी जिह्वा, यही दो उंगल का अंतर बताया गया है। जब तक जीव के भीतर भक्त के भीतर व्यग्रता नहीं आती है तब तक भगवान की ओर से कृपा नहीं होती है। इसीलिए माँ यशोदा में व्यग्रता नहीं थी, इसलिए भगवान नहीं बंधे। आगे के श्लोक में कहते हैं एवं स्वगेह दामनी यशोदा संत दक्षपि गोपी नाम सुसयंती नाम स्वयंती विस्मिता भव। तो आजू बाजू बगल अगल बगल वाले की सभी गोपियों को पता चला कि अब ये यशोदा माया माँ के घर में तमाशा लग गया है, लाला को बांध रही है, रेस पे कम हो रही, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहा। वो गोपी हंसती हंसती आई और हंसने लगी कि यशोदा क्या कर रही है, तुम तेरे लाला के ललाट में बंधना लिखा ही नहीं है, तेरे लिए तो ये शुभ संकेत है, क्यों बांध रही है उसको, इसके इसकी ललाट में अगर लिखा ही नहीं है बंधना तो छोड़ दे तू प्रयास। तो ऐसे गोपी नाम सुसयंती नाम, गोपीगण हंस रही थी तो साथ में स्मयंती यशोदा भी हंसी, कभी कभी हंसी आ जाती। हम लोग बहुत आवेश में रहते लेकिन कोई सामने वाला कुछ कहे ऐसी बात कहे तो हम लोग भी हंसी आ जाती है कि हंस लेते, तो यशोदा भी स्मयंती हंसी लेकिन विस्मिता भवत, साथ में वो विस्मित भी हुई। क्या विस्मित हुआ उसको, दो बात का विस्मित हुआ। एक तो लाला की कमर मुट्ठी पर कमर थी, लाला की कितनी कमर थी, लाला उस वक्त 3 साल का था, 3 साल से जन्माष्टमी के दीपावली का समय जोड़ दीजिए तो 3 ऊपर 2 महीना जैसा 2-3 महीना, जन्माष्टमी के दीपावली का 2 ही महीना रहता है ना, तो 3 और 2 महीना उतना था, तो मुट्ठी भर की कमर थी, तो कमर न तो बढ़ रही है और रस्सी हाथ की हाथ बढ़ रही है, फिर भी दो उंगल कम ही रहती है, फिर भी कम रहती है। और दूसरी बात, जितनी भी रस्सियां जोड़ो वो कम ही रहती है, कम ही रहती है, कम ही, दो उंगली कम रहती है। तो उस बात से मां विस्मित थी, ऐसा क्यों हो गया। वो गोपियों को कहने पर भी माँ यशोदा ने कह दिया, कौन यशोदा, चक्रवर्ती बात कहते कि कृष्ण में प्रेम अभिमान रखने वाली माँ यशोदा ने कह दिया, शाम हो जाए तो हो जाए लेकिन उसे बांधूंगा जरूर, छोड़ूंगी नहीं। माँ आज छोड़ने के मूड में नहीं थी, परमेश्वर को बांधने का प्रयास माँ ने छोड़ा नहीं, भगवान और भक्त में होठ लग गई, जिद हो गई, कौन हारे, भगवान के में बंधू नहीं, यशोदा के में छोड़ू नहीं। आखिरकार भक्त के सामने भगवान हार गए। इसे अगले श्लोक में कह रहे हैं कि माता के परिश्रम को देखकर भगवान स्वबंधन ने अपने आप बंधन स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया, माता के परिश्रम को देखकर। चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की टीका में कल कहेंगे
कि दो उंगली आप बार बार सुन रहे थे कि दो उंगल कम रह गई, दो उंगल कम रह गई, दो उंगल कम रह गई, क्यों रहती थी मालूम है? तो उसका समाधान करने के लिए यह श्लोक दिया गया है कि एक उंगल भक्त की ओर से, भक्त जब भजन में परिश्रम करता है, भजन जनित परिश्रम में लग जाता है, तो दूसरी ओर से एक उंगल क्या भगवान की कृपा का आश्रय उन्हें मिल जाता है। जब दो उंगल मिल जाता है तो भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। हम सब में दो उंगल की ही कमी है, एक हमारी ओर से, हम भजन में परिश्रम नहीं करते इसलिए भगवान की कृपा का आश्रय नहीं मिलता। जब भगवान की कृपा का आश्रय मिल जाएगा, हम परिश्रम कर देंगे, तब निश्चित रूप से भगवान प्रेम रूपी रस्सी से बांध जाएंगे। तो यही इसका सार है कि कोई व्यक्ति अपनी साधना में परिश्रम लगा देता है तो निश्चित रूप से भगवान उस पर कृपा करते हैं। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक कृपा नहीं होगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कमेंट, अपूर्ति को पूर्ति करनी है तो कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की।